अध्याय 10 योनातान और सिकंदर बालास। 160वें वर्ष अंतियोख एपिफानेस के पुत्र सिकंदर ने नाव से उतरकर पतोलेमाइस पर अधिकार कर लिया। वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया और वो वहां राज्य करने लगा। जब राजा डेमेट्रियस ने ये बात सुनी तो वो एक बड़ी सेना लेकर उससे लड़ने चल पड़ा। इसके साथ डेमेट्रियस ने योनातान के नाम सद्भावपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें उसने योनातान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने सोचा कि जब तक सिकंदर हमारे विरुद्ध उनसे मित्रता स्थापित करता है, उसके पहले ही हम उन्हें मित्र बना लें, क्योंकि योनातान निश्चय ही याद करेगा कि हमने उसके उसके भाइयों और लोगों के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। इसलिए उसने योनातान को सेना एकत्र करने, युद्ध सामग्री जुटाने और अपने को उसका मित्र घोषित करने की अनुमति दी। उसने जिन लोगों को गढ़ में बंधक के रूप में रखा था, उन्हें उसे लौटाने का आदेश दिया। योनातान यरूशलेम आया और वहां सब लोगों को और जो गढ़ में थे उन्हें भी बुलाकर उनके सामने वो चिट्ठी पढ़ सुनाई। जब लोगों ने ये सुना कि राजा ने उसे सैनिक इकट्ठा करने की अनुमति दे दी है, तो वे भय से कांप उठे। गढ़ के लोगों ने उन आदमियों को जो बंधक के रूप में पड़े थे योनातान के हवाले कर दिया और उसने उन्हें उनके माता पिता को लौटा दिया। अब योनातान यरूशलेम में बस गया और नगर के निर्माण और उसकी मरम्मत में लग गया। उसने कारीगरों को आज्ञा दी कि वे चार दीवारी फिर से उठाएं और सियोन पर्वत की चारों ओर गढ़े पत्थरों से किलाबंदी करें। उन्होंने ऐसा ही किया। तब वे गैर यहूदी भाग गए जो उन गढ़ों में पड़े थे जिन्हें बक्खी देश ने बनवाया था। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर स्वदेश लौट गया। केवल बेतसूर में कुछ ऐसे लोग रह गए जिन्होंने संहिता और आज्ञाओं का परित्याग किया था, क्योंकि ये शरण नगर था। राजा सिकंदर ने डेमेट्रियस द्वारा योनातान से की हुई प्रतिज्ञाओं के विषय में सुना। उसे उन लड़ाइयों और वीरता के कार्यों के विषय में भी बताया गया जो योनातान और उसके भाइयों ने किए थे, और उन कष्टों के संबंध में भी जो उन्हें झेलने पड़े थे। वो ये सुनकर बोल उठा, हम इसके जैसे आदमी कहां पा सकते हैं, हम इसे अपना मित्र बना लें और इससे संधि कर लें। उसने उसके नाम चिट्ठी लिख भेजी। उसमें लिखा था, राजा सिकंदर का भाई योनातान को नमस्कार। हमने सुना है कि आप एक वीर और शक्तिशाली योद्धा हैं और हमारे मित्र होने के सर्वथा योग्य हैं। आज हम आपको आपकी जाति का प्रधान याजक नियुक्त कर रहे हैं और आपको राजा का मित्र की उपाधि देते हैं। उसने उसे एक बैंगनी वस्त्र और सोने का मुकुट भी भेजा। आप हमारा पक्ष लें और हमारे मित्र बने रहें। 160वें वर्ष के 7वें महीने में शिविर पर्व के दिन योनातान ने पवित्र वस्त्र धारण किया। उसने सेना इकट्ठी की और बहुत से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। डेमेट्रियस द्वारा यहूदियों को प्रलोभन। डेमेट्रियस ने जब यह सुना तो उसने दुखी होकर कहा, हमने ये क्यों होने दिया? हमारे पहले ही सिकंदर ने यहूदियों को अपना मित्र बनाकर अपने पक्ष में कर लिया। मैं अभी उनके नाम मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर उन्हें सम्मान और उपहार देने का आश्वासन दूंगा, जिससे वे मुझे अपना सहयोग दें। इसलिए उसने उन्हें इस प्रकार लिखा, राजा डेमेट्रियस का यहूदी लोगों को नमस्कार। हमने सुन रखा है कि आप हमारे साथ हुए समझौते की शर्तों पर कायम रहे। आपने मित्रता का निर्वाह किया और हमारे शत्रुओं का पक्ष नहीं लिया। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। आगे भी आप इस तरह हमारे विश्वासी बने रहें। आप हमारे लिए जो करेंगे, हम उपकारों द्वारा उसका बदला चुकाएंगे। हम आपको कर में छूट और अन्य उपहार देंगे। आज से मैं आपको स्वतंत्र घोषित करता हूं और सारे यहूदियों पर से व्यक्तिगत कर, नमक का महसूल और राज उपहार हटा रहा हूं। उपज का एक तिहाई भाग और फलों का आधा भाग, जिस पर मेरा अधिकार था, आज से और आगे कभी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बात यूदा तथा उन तीनों जनपदों पर भी लागू होगी जो आज से सदा के लिए समारिया गलीलिया से अलग कर यूदा में मिलाए जाते हैं। यरूशलेम की पवित्रता बनी रहेगी और वो तथा उसकी सीमा में निवास करने वाले लोग दशमांश तथा करों से एकदम मुक्त रहेंगे। मैं यरूशलेम के गढ़ पर अपने अधिकार का परित्याग कर रहा हूं और उसे प्रधान याजक को दे देता हूं। वो उसमें अपने चुने हुए सैनिकों को रखे जो उसकी रक्षा करें। मैं यूदा के सभी यहूदियों को बिना कुछ लिए मुक्त करता हूं जो मेरे राज्य में कहीं भी युद्ध बंदी के रूप में रहते हैं। वे सभी अपने घर और अपने पशुओं पर लगाए हुए करों से मुक्त किए जाते हैं। सभी महापर्वों, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा अन्य पर्वों में और महापर्वों के तीन दिन पहले और तीन दिन बाद तक मेरे राज्य के सभी यहूदी बेगार और चुंगी से मुक्त होंगे। इन दिनों किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वो उनमें किसी पर मुकदमा चलाए, किसी कारण से उसे तंग करे। यहूदियों के 30,000 आदमी राजकीय सेना में भर्ती किए जाएंगे और जैसा अन्य सभी सैनिकों के लिए निर्धारित है, उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। उनमें कई लोग प्रमुख राजकीय किलों में नियुक्त किए जाएंगे और अन्य लोगों को विश्वासिक राजकीय पद दिए जाएंगे। उनके अध्यक्ष और अधिकारी उन्हीं में से चुने जाएंगे और जैसा राजा ने यूदा के लिए निश्चित किया है, वे अपने रीति रिवाजों का पालन भी कर सकेंगे। समारिया से अलग कर यहूदिया में मिलाए हुए तीनों जनपद यहूदिया प्रांत का भाग माने जाएंगे और उनका एक ही अध्यक्ष होगा, जिससे वे केवल प्रधान याजक के अधीन होंगे। मैं पतोलेमाइस और उसके आसपास की भूमि यरूशलेम के मंदिर को भेंट स्वरूप दे रहा हूं, जिससे मंदिर के आवश्यक खर्च का प्रबंध हो। मैं स्वयं उपयुक्त स्थानों से प्राप्त राजस्व में से प्रतिवर्ष चांदी के 15,000 शेकेल दूंगा। मंदिर को जो वार्षिक चंदा मिलना चाहिए और जिसे अधिकारियों ने पिछले वर्षों नहीं दिया, वो फिर चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त चांदी के 5,000 शेकेल की वो राशि जो प्रतिवर्ष मंदिर से प्राप्त होती थी, सेवा करने वाले याजकों को प्रदान की जाएगी। जो लोग राज्य ऋण या अन्य कारण से यरूशलेम के मंदिर और उसके सारे क्षेत्र में शरण ले चुके हैं, वे और मेरे राज्य में होने वाली उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। मंदिर बनाने और उसकी मरम्मत करने में जो कुछ लगेगा, वो राजकीय कोष से दिया जाएगा। यरूशलेम की चार दीवारी के निर्माण और किलाबंदी में जो कुछ लगेगा, वो भी राजकीय कोष से दिया जाएगा। यही बात यहूदिया की चार दीवारियों पर भी लागू होगी। देमेत्रियस का प्रस्ताव अस्वीकृत। जब योनातान और जनता ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे ये नहीं भूले थे कि देमेत्रियस ने इज़राइल के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया और उन्हें कितना सताया था। उन्होंने सिकंदर का पक्ष लेना अधिक उचित समझा, जिसने पहले मित्र होने का प्रस्ताव किया था, और उन्होंने उसके जीवन भर उसका साथ दिया। डेमेत्रियस की मृत्यु। तब राजा सिकंदर ने एक बड़ी सेना तैयार की और डेमेत्रियस से युद्ध करने चला। दोनों राजाओं की लड़ाई शुरू हो गई। सिकंदर की सेना भाग खड़ी हुई। डेमेत्रियस ने उसका पीछा किया और उसे हरा दिया। युद्ध सूर्यास्त तक चलता रहा, किंतु अंत में डेमेत्रियस उसी दिन मारा गया। क्लियोपात्रा से सिकंदर का विवाह। इसके बाद सिकंदर ने मिस्र के राजा पतोलेमाउस के पास दूतों द्वारा यह कहला भेजा, मैं अपने राज्य लौट आया और मुझे अपने पूर्वजों का राज सिंहासन प्राप्त हो गया। डेमेत्रियस को हराकर मैं यहां का शासक बन गया हूं और हमारा देश अब मेरे हाथ आ गया है। मैंने उसके विरुद्ध युद्ध किया और वो अपनी सेना के साथ पराजित हो गया। इसके बाद मैं उसके राज सिंहासन पर बैठ गया। आइए अब हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं। आप अपनी पुत्री का मेरे साथ विवाह कर दें। मैं आपका दामाद बनने का इच्छुक हूं। मैं आपको और उसे भी आपके योग्य उपहार दूंगा। राजा पतोलेमाउस ने यह उत्तर भेजा, धन्य है ये दिन जब आप अपने पूर्वजों के देश में लौट आए और उसके राज सिंहासन पर बैठे। आपने जो लिखा है मैं अब वही करूंगा, किंतु आप पतोलेमाइस तक आए जिससे हम एक दूसरे से मिलें और मैं आपका ससुर बनूं जैसा आपने कहा है। पतोलेमाउस 162वें वर्ष अपनी पुत्री क्लियोपात्रा के साथ मिस्र से रवाना हुआ और पतोलेमाइस आया। राजा सिकंदर ने उससे भेंट की और उसने उसे अपनी पुत्री क्लियोपात्रा को दे दिया। उसने पतोलेमाइस में राजाओं की प्रथा के अनुसार बड़ी धूमधाम से विवाहोत्सव मनाया। राज्यपाल के पद पर योनातान। राजा सिकंदर ने योनातान को पत्र लिखा जिससे वो उससे मिलने आए। तब वो धूमधाम से पतोलेमाइस आया और दोनों राजाओं से मिला। उसने उन्हें और उनके मित्रों को चांदी, सोना और बहुत सारे उपहार दिए और वो उनका कृपा पात्र बन गया। उस समय इज़राइल के कुछ नीच और धर्मत्यागी लोग राजा से योनातान की शिकायत करने आए, किंतु राजा ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने आज्ञा दी कि योनातान अपने वस्त्र उतार कर बैंगनी वस्त्र धारण करे। ऐसा ही हुआ। राजा ने उसे अपने पास बिठाया और अपने पदाधिकारियों से कहा, इनके साथ नगर जाओ और वहां घोषणा करो कि कोई किसी मामले में इनकी शिकायत न करे और इन्हें किसी तरह कष्ट न पहुंचाए। जब उन लोगों ने जो उस पर अभियोग लगाना चाहते थे ये देखा कि उसका सम्मान किया जा रहा है, उसके लिए ये घोषणा हो रही है और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया गया है, तो वे सब चले गए। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसका नाम अपने घनिष्ठ मित्रों की सूची में लिखवाया। उसने उसे सेनापति और राज्यपाल बना दिया। इसके बाद योनातान शांति और आनंद के साथ यरूशलेम लौट गया। अपोलोनियस पर योनातान की विजय। 165वें वर्ष में डेमेत्रियस का पुत्र डेमेत्रियस क्रेत से अपने पूर्वजों के देश आया। जब राजा सिकंदर ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो अंताकिया लौट आया। डेमेत्रियस ने अपोलोनियस को केले सीरिया का राज्यपाल नियुक्त किया। उसने एक विशाल सेना एकत्रित की और यमनिया के निकट पड़ाव डाला। तब उसने प्रधान याजक योनातान को यह कहला भेजा, केवल आप हमारा विरोध कर रहे हैं, आपके कारण लोग मेरा उपहास और मेरी निंदा करते हैं। आप पहाड़ी प्रांतों पर अधिकार कर हमारा विरोध क्यों करते हैं? यदि आपको अपनी सेना का गर्व है तो आप मैदान में उतर आइए, वहीं हम दोनों की शक्ति की परीक्षा हो। नगरों की सेना मेरे पक्ष में है, पता कीजिए, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूं और हमारे सहायक कौन हैं। आपको बताया जाएगा कि आप हमारे सामने नहीं टिक सकते। आपके पूर्वज अपने देश में ही दो बार पराजित हो चुके हैं। आप हमारे घुड़सवारों और विशाल सेना के सामने मैदान में टिक नहीं सकेंगे। वहां न पत्थर है, न कंकड़ और न कहीं ऐसा स्थान जहां कोई भाग कर शरण ले। अपोलोनियस की ये बात सुनकर योनातान घबरा गया। उसने 10,000 आदमियों के साथ यरूशलेम से प्रस्थान किया। उसका भाई सिमोन भी उसकी सहायता के लिए उसके पास गया। योनातान ने याफा के पास पड़ाव डाला। नगरवासियों ने फाटक बंद कर दिए क्योंकि अपोलोनियस का एक दल याफा के भीतर था। जब योनातान ने उस पर आक्रमण किया तो नगरवासियों ने डर कर फाटक खोल दिए और योनातान ने याफा पर अधिकार कर लिया। ये सुनकर अपोलोनियस 3,000 घुड़सवार और एक विशाल सेना लेकर अजोत की ओर चल पड़ा, किंतु वो वास्तव में मैदान की ओर बढ़ना चाहता था क्योंकि उसे अपने बहुसंख्यक घुड़सवारों का भरोसा था। योनातान अजोत तक उसका पीछा करता रहा और वहां दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। अपोलोनियस ने 1,000 घुड़सवार मार्ग में छोड़ दिए जिससे वे पीछे से योनातान पर आक्रमण करें। योनातान को इस बात का पता चला। उसकी सेना घिर गई और सवेरे से शाम तक उसके आदमी बाणों का शिकार बनते रहे। फिर भी जैसा योनातान ने आदेश दिया था उसके आदमी डटे रहे। शत्रु के घोड़े थकने लगे। इसी बीच सिमोन भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और उसने पैदल सैनिकों पर आक्रमण किया। घोड़े भी थक चुके थे। सिमोन ने शत्रुओं को हरा दिया और वे भाग खड़े हुए। घुड़सवार मैदान में तितर बितर हो गए। भागने वाले सैनिकों ने अजोत पहुंचकर अपने देवालय में शरण ली। योनातान ने अजोत और उसके आसपास के नगरों में आग लगा दी और उन्हें लूटा। दागोन का मंदिर और उसके शरणार्थी जलकर राख हो गए, तलवार से मारे गए और जलने वाले लोगों की संख्या सब मिलाकर लगभग 8,000 थी। योनातान ने यहां से आगे बढ़कर अशकलोन के निकट पड़ाव डाला। नगर के लोग बड़ी धूमधाम से उससे मिलने आए। लूट के माल से लदा योनातान अपने लोगों के साथ यरूशलेम लौट आया। जब राजा सिकंदर ने ये बात सुनी तो उसने योनातान को और सम्मान देने का विचार किया। उसने उसे सोने का एक बक्सुआ दिया जो केवल राजकीय संबंधियों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने उसे अक्करोन और उसके आसपास का भूभाग व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दे दिया।